ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक्दर्शन चरणगुण पाय कुकर्म कृपा केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते हो तत्व तीर्थंकर भगवान की वाणी में चारों ही अनुयोगों द्वारा इस जीव को जो उपदेश देने में आया है उसमें से हम करना नियोग की बात देख रहे हैं। यहाँ जीव की जो 20 प्ररूपणा है, प्ररूपणा का अर्थ होता है विशेष व्याख्यान। हमने अभी शुरू किया है ना यहाँ पर, तो ये 20 कौन कौन सी बातें हमने देखी थी। एक तो होता है गुणस्थान और जो अन्य जो है उसको कहेंगे टोटली मार्गणा स्थान। उसमें 14 मार्गणा है और अन्य जो 5 बातें हैं उनका नाम है जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग। अभी उसमें से हम जीव समास की बात देख रहे थे, तो सामान्य से जो संसारी जीव है उनको हमने 14 में विभाजित किया था। तो विभाजित करने के लिए कुछ न कुछ वहाँ कॉमन फैक्टर होना चाहिए कि जिसके द्वारा हम उसके ग्रुप बना सके। तो यहाँ हमने कौन सा फैक्टर लगवाया है कॉमन फैक्टर, तो कितने इंद्रिय वाला जीव है यानी उनकी इंद्रिया कैसी है, शरीर कौन सा है, उसकी अपेक्षा से यहाँ विभाजन किया है। तो यहाँ हमने यहाँ मुख्य 7 भेद लिखे है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक इंद्रिय के 2 भेद है सूक्ष्म और बादर, द्विंद्रिय, तीनिय, चतुर्द्रिय, पंचेन्द्रिय के भी 2 भेद है असंगी और संगी। इस तरह से ये जो 7 भेद है उसमें से 7 ही में पर्याप्त भी जीव होते हैं और 7 के ही अपर्याप्त भी होते हैं। अपर्याप्त का अर्थ हमने दोपहर में किया था कि जो हम जिसको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं, जिनकी आयु अत्यंत अल्प होती है, जिसको कहते हैं श्वास के 18वें भाग में वो उनके एक लाइफ स्पैन होती है, यानी वो जन्म मरण करते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, यानी एक आयु कितनी है श्वास के 18वें भाग प्रमाण, इतनी उनकी अल्प आयु होती है। उसको क्षुद्र भव ऐसा भी नाम है। क्या नाम है? क्षुद्र भव, यानी इतना छोटा भव है उसका, फिर भी असंख्यात समयों का होगा। उसके भी हमने डिटेल में बातें थोड़ी देखी थी, दोबारा जब पर्याप्ति का प्रकरण आएगा तो फिर उसकी बात दोबारा आ जाएगी। तो ये जो लब्धि अपर्याप्त जीव है, क्योंकि उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है, इतने जल्दी मर जाते हैं। ये कौन कौन से है, तो हमने तो आज तक ऐसा ही सुना था एकमात्र निगोद के ही इतनी अल्प आयु होगी, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो अपर्याप्त जीव है निगोद में भी होते हैं, प्रत्येक वनस्पति में भी होते हैं, पृथ्वी का, अग्नि का, एक आदि अन्य में भी होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म में भी होते हैं, बादर में भी होते हैं, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्द्रिय, संगी असंगी में भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं। मनुष्य भी ऐसे सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं जिनकी आयु इतनी अल्प होती है। एक बात ख्याल में लेना, जो जो गर्भ में आने वाले जो जीव है वो पर्याप्त ही होते हैं, भले वो एक मिनट के अंदर वो जो हम कहते हैं ना फर्टिलाइज्ड एग, यानी वहां अभी वो स्त्री बीज और पुरुष बीज का वो संयोग हुआ है और वो अभी एग तैयार हुआ है, जिसको हम कहेंगे अभी वहां मनुष्य लाइफ शुरू हो गई वहां, तो एक मिनट के अंदर भी वो नष्ट क्यों नहीं हो, वो है पर्याप्त मनुष्य भव। और ऐसे पर्याप्त मनुष्य भव हम देखते हैं, अभी हम उस बात पर आएंगे जब काय की बात आएगी, कि यह जीव एकेंद्रिय में से बहुत कितने ही दुर्लभता से द्विंद्रिय आदि अन्य पर्याय पा सकता, जिसको कहेंगे त्रस पर्याय, अत्यंत दुर्लभ में दुर्लभ है। शास्त्र में तो उसका वर्णन किया है, जैसे चौराहे में बड़ी भीड़ में आपको कोई चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए, ऐसे ये त्रस पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ये चिंतामणि क्या होता है? ऐसा रत्न है केवल अमूल्य नहीं, तो उस अमूल्य वो रत्न के सामने आप जो कोई इच्छा करे, चिंतामणि जो कोई चिंतन करे वो प्राप्त होता है। मणि यानी वो उसका हीरा जो कोई है रत्न, तो ऐसा अमूल्य रत्न और आपको झवेरी बाजार के वो भीड़ में गर्दी में कहीं मिल जाए तो वो कितनी रेयर पॉसिबिलिटी है, ऐसी ही रेयर पॉसिबिलिटी। तो द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय आदि पर्याय मिलना भी अत्यंत मुश्किली से किसी को मिलते, मिल भी जाए तो लगातार द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जिसको हम त्रस कहते हैं, बारंबार मर के त्रस में ही अगर कोई उत्पन्न हो जाए जीव, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, तो 2000 सागर। 2000 सागर में ये त्रस स्थिति पूरी होती है और वो नियम से एकेंद्रिय में चला जाता है। एकेंद्रिय में यानी पांचों प्रकार के जो है स्थावर, उसमें भटकने का कितना काल है मैं मालूम है आपको? मैक्सिमम पॉसिबल कितना है बहन?
क्या
एकेंद्रिय में गया त्रस में से एकेंद्रिय में गया अनंत काल पर, अनंत कितना है उसको समझाने का कोई तरीका है ना? देखो एक पुद्गल परिवर्तन जो है परावर्तन वो अनंत है, और ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन उसका एकेंद्रिय में भटकने का काल है। कभी पृथ्वी का एक होगा, कभी वनस्पति का एक होगा, कभी निगोर होगा, कभी अन्य एकेंद्रिय होगा अग्नि जलवायु, इसमें से ही वो भटकता रहेगा, इतने काल तक भटकेगा। जो अरे आधा पुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत काल है, और ये तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक एकेंद्रियों में भटकेगा। हो सकता है फिर त्रस पर्याय मिले, परंतु हर बार 2000 सागर मिलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एक ही भव करके वापस एकेंद्रियों में जा सकता है। हाँ हर बार
कब 2000 मिलती है?
किसी को मिले तो मिले, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये। हर त्रस को इतना नहीं मिलता है, हो सकता है अनादि से निगोद में था, बाहर आया है अन्य केंद्रियों में, या मान लेते कोई द्विंद्रिय कोई लटी येल वगैरह हो गया है और एक ही भव करके वापस एक केंद्रीय में चला गया। जरूरी नहीं उसको 2000 सागर मिले, मैक्सिमम पॉसिबल काल 2000 सागर है। अभी ये 2000 सागर में भी मनुष्य के भव अत्यंत अल्प होते हैं, और फिर उसमें से भी नारकी के असंख्यात गुणे, उससे देव के ज्यादा, और उससे भी तिरंचों में तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये काल बिताता है। तो ये गिने चुने जो मनुष्य के भव है, तो मनुष्य भव ये भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, हो मनुष्यों के भव सब मिलेगे ऐसी कोई गारंटी नहीं। और हमें अभी मनुष्य भव मिलने के लिए क्या करना है? हाँ बोलो भाई, मनुष्य भव प्राप्त होने के लिए हमें अभी कौन से परिणाम करने हैं?
शुभ।
आप कौन है और हम कौन है? कौन से भव में है? मैंने पूछा था अभी मनुष्य भव प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हम मनुष्य है ऑलरेडी है ना, अभी क्या करना रहा? तो रेयरेस्ट पॉसिबल भव मिला है, तो हम कहाँ बीता रहे हैं उसको देखना है, अपना अपना देखना, बताना नहीं किसी को। इस भाव में करने जैसा कार्य क्या है, अपने आत्मा को पहचानने का, उसके अलावा अन्य कोई किसी के प्रायोरिटी है ही नहीं इस भाव में। हमें जितना लिविंग के लिए जरूरी है उतना धन हमारे पास है, फिर भी हम उसके जुटाने के पीछे क्यों हमें भय है, अरे ये चला जाएगा तो बुढ़ापे में मैं क्या करूं, तो मुझे ये करना पड़ता है इसलिए उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, या कोई अन्य करता है इसलिए हम करते हैं, या टाइम पास नहीं होता करते है, है कि नहीं है? जो टाइम है एक बार पास होने के बाद फिर मिलने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसे ये मार्ग बहुत देरी से मिलता है, फिर बहुत पछतावा हो जाता है, अरे मुझे ये मार्ग जल्दी मिलता तो। परंतु तभी मिलता है जब अपनी योग्यता होती है। फिर भी मिलने पर अगर हम उसमें कोई टालम टाल करेंगे और फिर इधर उधर अपना टाइम व्यर्थ गवाएंगे तो हमारे जैसा मूर्ख हम है। और ये अपने कल्याण के लिए बात करनी है, ना किसी को दिखाने के लिए है, ना किसी अन्य की बात है। हमें कोई धर्म को ऊपर नहीं लाना है, हम धर्म का आधार लेंगे तो हम इसमें से बचेंगे। ये धर्म को आपकी जरूरत नहीं है, आपको धर्म की जरूरत है, हमें आपको। हम धर्म का आधार लेंगे तो हम बच जाएंगे। हमें क्या लगता है, नहीं हमको धर्म का उद्धार करना है, अरे धर्म का उद्धार विद्धार कुछ नहीं करना है। जिन धर्म अनादि से और अनंत काल तक रहने वाला है, अभी भरत क्षेत्र में कुछ उसमें अभी हीनता हो गई और वो काल में ऐसे होने ही वाले ही, ये तो भगवान की वाणी में भी आया है। परंतु ऐसे निकृष्ट काल में हमें अत्यंत उत्कृष्ट उपदेश अवेलेबल है आज। ये हमारा महाभाग्य का उदय है, अभी जिसे कहते हैं ना पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय बिना और अपनी पात्रता बिना ये वाणी कान में भी नहीं पड़ सकती, ऐसी ही ये बात है। फिर भी अभी हमें यदि हम उसको सुनते हैं तो सही रूप से उसको समझना चाहिए, थोड़ी बहुत उसको याद रखना। क्यों, कितना याद रखना, हमें उस पर विचार करना है। इसलिए नहीं याद रखना तो रखता है तो पुस्तक सामने लेकर बैठ जाना, इसमें सब कुछ लिखा है, उतना तो पढ़कर एक वाक्य पर तो विचार कर सकते हैं कि नहीं रख, क्योंकि ये मनुष्य भव खोने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये हमें कुछ याद करने के लिए नहीं करना है, अरे हम कितने कितने पर्यायों में अनंत काल भटक कर आए हैं और फिर भी हम नहीं चेते। मनुष्य भव भी मिला नहीं, ये बात नहीं, अनंत बार मिला, अनंत बार हमने तप किए है अज्ञान अवस्था में। ये शास्त्र में आता है वो छोड़ाला नाम कर कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। मिथ्या दृष्टि ग्रेवेक में कौन उपजता है, जो मुनि होता है वही उपजता है। तो इतना भी तप किया फिर भी मिथ्या दृष्टि रहा, सम्यक दर्शन के साथ वहां उपजता तो अनंत बार नहीं ग्रहण करना पड़ता, वो तो जल्दी मोक्ष चला जाता है ना। तो हमारी कहीं ना कहीं भूल हो रही है, उस भूल को हमें देखना है। ये जो सारे हम सिद्धांत यहाँ पढ़ते हैं, स्पेशली जो द्रव्यान योग के सिद्धांत, उसको बारंबार श्रद्धा में और ज्ञान में उसका घोलन चलना चाहिए, तभी वो कार्य ये तत्व विचार में ही सब कुछ हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे, ये सूक्ष्म और बादर क्या है उसको हम देख रहे थे। हमने ये देखा था कि जिसको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है वो सूक्ष्म जीव है, और जिसको बादर नाम कर्म का उदय होता है वो बादर जीव है। तो उनको पहचानना कैसे, तो उनके ऐसे शरीर की रचना ऐसी इस प्रकार के होती है कि वो ना अग्नि से जलते हैं, ना जल से गलते हैं, ना वायु से उनको हटाया जा सकता, ना उनकी कोई हिंसा कर सकता है। किसकी, सूक्ष्म एकेंद्रियों की। छोटे छोटे कीड़ों को सूक्ष्म कहना वो बात यहाँ नहीं है, जिनको सूक्ष्म और बादर में से जिनको सूक्ष्म कहा उनकी बात चल रही है। आपका पृष्ठ होगा मेरे ख्याल से 120 पर आ गए क्या। हाँ देखो, देखो हम यहाँ देखा था हमने सूक्ष्म जीव, ये बीच में ही पैराग्राफ के बीच में ही जो है ना, वज्र अग्नि जल पर्वत मिला। हाँ, मेरु आदि से रोके नहीं जा सकते, अग्नि आदि से मारे नहीं जा सकते, उनका कदली घात से मरण नहीं होता, मिला कि नहीं मिला। इस पर हमने चर्चा भी की थी। हाँ, बहुत चर्चा हुई थी। उनकी हिंसा नहीं कर सकते, नहीं, ये दो लाइन छूट गए बीच में। अपनी आयु पूर्ण करके आयु के अंत में ही वे मरते हैं। वे जीव अन्य जीवों को मारते नहीं, क्यों? अप्रतिघात है, क्योंकि वो मारेंगे कैसे? जैसे कोई चीज है सॉलिड, हम ऐसा करेंगे तो किसी को मार बैठे। अब उनका शरीर ऐसा है सूक्ष्म, थ्रू एंड थ्रू चला जाए तो वो कैसे मारेंगे? तो उनके द्वारा अन्य का घात नहीं होता, ना उनको कोई घात उनका कर सकता है, उनकी हिंसा नहीं कर सकते। वे किसी के आधार के बिना रहते, ये एक महत्व की बात। जैसे जो बादर जल का एक है जो हमें दिखाई देते हैं, बादर पृथ्वी का एक है, जो हम आप जो लोग हैं या ये बड़ी बड़ी वनस्पतियां हैं, ये पृथ्वी के आधार से रहती है। वैसे ये सूक्ष्म जीवों को किसी के आधार से रहने की जरूरत नहीं। पूरे स्पेस में, लोकाकाश के सर्वत्र ये पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। कौन से पांच प्रकार? सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वायु का एक, और सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म वनस्पति का एक में सूक्ष्म निगोद होते हैं ये सभी। और इनके पर्याप्त अपर्याप्त सब, उनके किसी आधार की जरूरत नहीं, वो सर्वत्र है। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव मारने से नहीं मरते, काटने से नहीं कटते, अग्नि द्वारा जलते नहीं, हवा से उड़ते नहीं, सभी पर्वत भींत शरीर आदि में से आर पार गमन करते हैं। जब हम कहते हैं निगोद जीव उसको नहीं खाना, तो वो सूक्ष्म की बात नहीं है, वो बादर की बात है। क्योंकि सूक्ष्म जीव तो कुछ कटते ही नहीं है, मरते ही नहीं है। सूक्ष्म जीव लोकाकाश में सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं, यानी वात वलयों सहित सर्वत्र। लोकाकाश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ सूक्ष्म निगोदिया जीव, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म वायु का एक जीव ठसाठस भरे न हो। जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है वहाँ ये जीव है कि नहीं है? सर्वत्र है। सिद्ध शिला के अंदर भी है और बाहर भी है, सर्वत्र है। सर्वत्र का अर्थ अभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। तुम कहते ये लोहे का बड़ा गोला होगा तो उसके अंदर भी होगी कि नहीं होगी? मेरु पर्वत के आर पार सर्वत्र है ना। सर्वत्र का अर्थ ऐसे कोई अभी जगह खाली नहीं है कि यहाँ जो सूक्ष्म जीव न हो। अब हम बादर जीवों की बात देखते हैं। बादर नाम कर्म के उदय से जीव बादर होते हैं, जिनका शरीर प्रतिघात युक्त है। हमने देखा था प्रतिघात यानी वो अड़ना, दूसरों के द्वारा रोके जाना या स्वयं दूसरे को रोकना, उसको कहते हैं प्रतिघात युक्त। और जिनका शरीर अन्य पुद्गलों द्वारा प्रतिघात रहित यानी अटकाव रहित है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अभी हमने सूक्ष्म की डेफिनेशन देखी थी। बादर जीव लोकाकाश में सर्वत्र नहीं पाए जाते। सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, बादर जीव सर्वत्र नहीं पाए जाते। आठ पृथ्वियां और अन्य जीवों के आश्रय से बादर जीव रहते। ये आठ पृथ्वियां कहाँ है? हमें तो एक ही हमारी गोल पृथ्वी मालूम है। आठ मालूम है? आठ पृथ्वियां कहाँ पर है बोलो? नहीं मालूम है आपको? ये तो आपने जम्बू द्वीप तो किस में है? मध्य लोक, मध्य मध्य भाग में। जैसा अभी आपके पास ये तो फ्रंट व्यू है, ऐसा लोकाकाश नहीं है। ये लोकाकाश का पूर्व पश्चिम विस्तार जो सामने से दिखाई देता है। यदि ऐसा हम थ्री डायमेंशन में करेंगे तो सर्वत्र सात राज्य हैं। तो ये सात राज्य में सेंटर में ऊपर से नीचे तक एक त्रसनाली होती है, एक राजूबा एक राजू वाली ऐसी। ये तो फ्रंट से दिखाया आपको, तो सेंटर से नीचे तल तक ऊपर से चौदह राजू, परंतु उसका डायमेंशन कितना? एक राजू ऐसा, एक राजू ऐसा, चौदह राजू ऐसा। ये त्रसनाली है। परंतु पृथ्वी किसको कहना? लोकाकाश के एक एंड से जो दूसरे एंड तक है उसको पृथ्वी कहते हैं। अब दूसरे नहीं दिखाई दे फिर भी, अब रे हमने सेंटर वाली मध्य लोक की हमारी जो पहली पृथ्वी है, देखो ये आप हमेशा देखते हैं सामने से, चौदह राजू ऐसा है, यहाँ एक राजू, ये पांच राजू, एक राजू और फिर ये सात राजू। इस तरह से यहाँ एक राजू है, परंतु ये पृथ्वी ऐसी सात राज्यों तक फैली हुई है, एक राज्य बाय सात राज्य, पहली पृथ्वी। और उसकी फिर मोटाई हर एक पृथ्वी की अलग अलग है, इसका 184,000 योजन की ये पृथ्वी है पहली, इसके ऊपर हम रहते हैं। परंतु इतनी बड़ी पृथ्वी, परंतु ये जो सेंटर में यहाँ ये त्रसनाली ऊपर से नीचे तक है, वहाँ ये असंख्यात द्वीप समुद्र है। दोपहर में हमने उसकी बात की थी, स्वयंभूरमण समुद्र की, जो लास्ट वाला समुद्र है। अब ये पृथ्वियां कैसी है उसको देखते हैं, अभी हम फ्रंट व्यू में देखेंगे। ये वाली जो पहली पृथ्वी यहाँ जो मोटी दिखाई है, ये पहली पृथ्वी है, वो सबसे ज्यादा उसकी जो ब्रिथ जो है प्राण है, उसके नीचे नीचे के पृथ्वियां क्रम से उसका जो विड्थ है वो कम होती चली जाती है। हर एक पृथ्वी के नीचे तीन तीन वात वलय है, जिनकी मोटाई 20,000 योजन की है, हर एक पृथ्वी के नीचे 60,000 योजन के तो वात वलय है उसमें, उसके नीचे भी, दूसरी के नीचे भी, तीसरी के नीचे भी, और बीच में असंख्यात योजनों की स्पेस है, अंतराल है। एक के नीचे एक ये छह पृथ्वियां, सात पृथ्वियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और आठवीं पृथ्वी कहाँ है? ऊपर देखो, ये अंतिम, वो भी ऐसे ऐसा एक राज्य और ऐसे सात राज्य पहले, उसके सेंटर में जहाँ ये हम त्रस नाली दिखाते हैं, उसके भी सेंटर में, सेंटर में कितना, जो हमारा ढाई द्वीप है 45,00,000 योजन, उतनी ऐसी विर्थ वाली वहां सीधे सीधा, वो कितनी मोटी है, वो पृथ्वी सर्वत्र 8 योजन मोटी है, परंतु सिद्धशिला सेंटर में 8 योजन है और साइड में ऐसी वो पतली है, नहीं पेपर थिन जिसको हम कहेंगे। तो बहुत छोटा कर्वेचर है, चांदबीन जैसा नहीं दिखेगी वो, फिर भी ये 8 पृथ्वियां। तो पृथ्वी किसको कहना, लोकाकाश के एक एज से दूसरे एज तक फैली है, पूर्व पश्चिम में भी और दक्षिण उत्तर में भी, इसको कहना पृथ्वी। हमारे लौकिक पृथ्वी की बात यहाँ नहीं है, और उसके साथ अभी मिलान करते रहना नहीं, नहीं तो आगे का विषय छूट जाएगा। तो ये जो पृथ्वियां हैं, 8 पृथ्वियां, इनके आधार से बादर जीव रहते हैं, इतनी बात अभी अपनी चलेगी। ये इसमें तो बहुत विस्तार है, पूरा जैन भूगोल, जिसको इंटरेस्ट है उसको चार्ट्स भी है, और वहां उसकी वी सीरीज भी है, उसकी बात हम बात करेंगे, जिसको इंटरेस्ट है वो बाद में बात करना। अब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे कि 8 पृथ्वियां और अन्य जीवों के आश्रय से बादर जीव रहते हैं। अन्य जीवों के आश्रय से क्यों कहा, क्योंकि जो निगोद आदि जो है ना, बादर निगोद, वो तो शरीरों के आधार से रहते हैं, अन्य वनस्पतियों के आधार से रहते हैं, इसको कहते हैं अन्य के आधार से रहते हैं। देखो, आकार से छोटा होना सूक्ष्म का अर्थ नहीं है, जिन्हें छोटा आकार है इसलिए सूक्ष्म, ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म जीवों का शरीर सूक्ष्म है, अर्थात वह शरीर किसी अन्य को रोकता नहीं, अन्य भी कोई उसे रोक नहीं सकता। भींत में से, लोहे के गोले में से वे आर पार जा सकते हैं, जैसे कांच में से प्रकाश के किरण आर पार जाते हैं। यह तो दृष्टांत है, इसमें प्रकाश और कांच दोनों स्थूल स्कंद है। क्या कहा, स्थूल क्यों दिखाई दे रहे हैं ना, और वो तो ऐसे सूक्ष्म है कि वो तो आंखों से दिखाई भी नहीं देंगे। बादर पृथ्वी नीचे का भी, हम बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक आदि जीव, पृथ्वी के आधार से रहते हैं, परंतु पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि घर में हम 4-5 लोग ही रहते हैं, परंतु वहां भी सर्वत्र 5 प्रकार के सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव तो है ही। आजकल तुम लोगों की यह बात आसानी से समझ में आ सकती है, तुम्हारे बच्चों को बुखार आया हो और रोग का निदान न होता हो तो डॉक्टर बताते होंगे कि यह तो वायरल फीवर है। वायरस नाम के कीटाणु उनसे होते हैं, तो वहां पूछते डॉक्टर की, दिखाओ मुझे वायरस, नहीं तो नहीं हम मानेंगे। हम भी उस पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं। ये तो बात हो गई थी कल, कि डॉक्टर की तो हम सभी बातें मानते हैं ना, हाँ उसको तो भगवान मान लिया हमने। सचमुच लोग भगवान मानते हैं, अभी यहाँ की बात मालूम नहीं है, यहाँ तो डॉक्टर की कोई मिस्टेक हो तो सू भी करते हैं उसको। इंडिया में तो अब भी वो फैमिली फिजिशियन हो तो वो तो भगवान जैसे नेक्स्ट टू भगवान, और भगवान से भी बढ़कर मानते हैं उसको। देखो आजकल हमें सर्वज्ञ से बढ़कर डॉक्टर पर विश्वास है। डॉक्टर ने बताया हुआ परहेज और दवाइयां बड़ी सावधानी पूर्वक लेते हैं। इसका कारण है देह में अपनी एकत्व बुद्धि। देह ही मैं हूं ऐसी मान्यता चल रही है। देह को मैं मानने पर देह के लिए जो जो बातें अनिष्टकारक होती है उन्हें हम टालते हैं। देखो ये सहज होता है कि नहीं होता है? यह मैं हूं मान लिया तो इसके लिए जो अच्छा है उसको हम करते हैं। अब इसके आगे हम जीव जो मैं स्वयं हूं उसी को मैं मान लिया और ये मैं नहीं मान लिया तो अब हम क्या करेंगे? मैं यानी जो आत्मा है उसके लिए जो जो अच्छा हुआ वो हम करेंगे नेचुरली, फिर उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। हम मैं को किस में प्लेस करते हैं उसके आगे की जो सोच है ना, कौन से भाव करना नहीं करना ये अपने आप होते हैं। हमने मैं शरीर में स्थापन किया तो उसके लिए जो अच्छा बुरा है उसको हम वैसे ही हमारी बुद्धि चलेगी, वैसे ही विचार आएंगे, वैसे इच्छा भी उत्पन्न होगी। बहन जब हमने आत्मा में मैं स्थापन किया तो अभी वैसी वो शरीर के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती वो नहीं उत्पन्न होगी, उसको कहेंगे इच्छा का निरोध। ख्याल में आए ना, ये तरीका यही है उसका। परंतु मैं जीव हूं समझने के बाद मुझे कौन सी बातें अनिष्टकारक है इस बारे में हम सोचते हैं या नहीं, जरा अपने मन से पूछो तो सही। सर्वज्ञ भगवंत ने प्रत्यक्ष जानकर बताया है कि कंद मूलादि वनस्पति में निगोद जीव रहते हैं। कंद मूलादि यानी अन्य भी बहुत लंबी लिस्ट है, उसको हम देखेंगे कभी। आलू प्याज लहसुन आदि में अनंत जीव रहते हैं और इनके भक्षण में अनंत जीवों की हिंसा होती है। ये बादर जीव रहते हैं वहां पर, सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म निगोद की या सूक्ष्म अन्य जीवों की तो कोई हिंसा ही नहीं करता, अभी अभी हमने देखा था। परंतु जहाँ बादर जीव रहते हैं, हाँ
सूक्ष्म जीव है हाँ, तो निगोद के जो जीव को कद के हिसाब से आप बता सकते हैं सूक्ष्म जीव का कद क्या होगा?
और हाँ अवगाहना उसकी हाँ, कितनी होगी? हाँ देखिए ये सूक्ष्म जीवों की अवगाहना कितनी होती है तो उसको जो उसका प्रमाण है उसको कहेंगे अंगुल का असंख्यातवा भाग। अब वो इतना छोटा है कि वो हमारे तो इंद्रियों के द्वारा भी दिखाई नहीं देगा, फिर उसके असंख्यात गुना जो सूक्ष्म वायु कायिकों की अवगाहना होती उससे असंख्यात गुना सूक्ष्म तेज कायिक की अवगाहना है उससे असंख्यात गुना, फिर भी वो भी जीव हमें नहीं दिखाई देते। ये अवगाहन आपके पास पुस्तक आई है ना, तो ये अवगाहना के टेबल यहाँ पर दिए है सारे, कितने जीवों की कितनी कितनी अवगाहन है उसकी बात यहाँ बताई है। हाँ जीव समास वाला जो प्रकरण है ना उसी में है, क्योंकि वो मैं यहाँ लेने जाऊँ ना तो सबको, एक तो सबके हाथ में पुस्तक नहीं, वैसे समझ में आए ऐसी बात है, कोई कठिन बात तो है ही नहीं। देखो आपके पास पुस्तक होगी तो उसमें 188 पेज पर है, आप अपने पुस्तक में लिख सकते है ये सारे अवगाहना के भेद इसमें देखे और किस तरह से उसको कैलकुलेट करना, पूरे गणित दिए हैं इसमें।
ये देखिए इस तरह से
टेबल है पूरा, जिसको कहते हैं 64 अवगाहना, मिनिमम अवगाहना से मैक्सिमम अवगाहना तक। इसमें है संदृष्टि में,
ये वो कुछ काम करेंगे,
ये इस वही है उसकी संदृष्टि, उसके गणित है, इसमें कोड लैंग्वेज में दिया और उसमें एक्चुअली सभी फिगर्स है। ये सभी जो हम देख रहे हैं ना ये 20 प्रलोकना जीव की, इनकी सब विस्तार की वर्णन उस पुस्तक में, जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जिसके आधार से हम यहाँ अभी चर्चा कर रहे हैं।
तो इनकी अवगाहना जीव से ज्यादा होगी
किसकी?
सूक्ष्म
निगोद से की सबसे कम अवगाहना,
मिनिमम
उससे सूक्ष्म वायु कायिक की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुना ज्यादा बड़ी होगी, असंख्यात गुना। और उससे वो है नीते वा ऐसा वहां लिखा है कुछ, तो उस अकॉर्डिंगली उसका डिस्क्रिप्शन उसके साइड के पेजेस में लिखा है। देखो हम आगे बढ़ेंगे, देखो हम जब कहते हैं ना यहाँ निगोद रहते हैं, निगोद रहते का अर्थ क्या है, किसी के आधार से जब रहेंगे तो उसको कौन से निगोद कहेंगे, बाधक। किसी के आधार से नहीं रहते वो सूक्ष्म निगोद, उनकी हत्या तो होती नहीं अपने से। श्वास में भले अंदर जाए बाहर आ जाए, कोई हत्या का कोई वहां होती नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ से जितने हैं। परंतु जहां बादर निगोद है और जहां अनंत जीव है, देखो निगोद का स्वरूप हमें मालूम नहीं है। निगोद कहना किसे, पहले ये देखते हैं निगोद ये कौन से कायिक का लक्षण है। हमने पांच प्रकार के एकेंद्रिय देखे, निगोद एकेंद्रिय के पंचेंद्रिय क्या है उसको तो पहले नक्की करेंगे।
एकेंद्रिय
कौन से कायिक वाले हैं, वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिकों में दो भेद होते हैं, एक होते हैं नहीं
साधारण,
साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति जिसका नाम है निगोद, और प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का अर्थ है एक जीव, उसका एक शरीर। साधारण वनस्पति का अर्थ है एक देह, शरीर एक, और एक ही शरीर में अनंत जीव रहते हैं। प्रत्येक वनस्पति कहेंगे या प्रत्येक शरीर वनस्पति कहेंगे तो ऐसा अर्थ नहीं है कि एक पूरा झाड़ एक जीव है। उसमें प्रत्येक वनस्पति जो जीव है वो असंख्यात रहते हैं। एक पत्ता है, पान जिसको हम कहते हैं पेड़ का, उसमें असंख्यात जीवों के ऐसे अलग अलग देह साइड बाय साइड है सब। तो उसके आधार से जब निगोद रहेंगे उनको क्या कहा हमने, प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति यानी प्रत्येक शरीर ही वनस्पति। उसके आधार से जब निगोद जीव रहेंगे तो हम कहेंगे सप्रतिष्ठित प्रत्येक या प्रतिष्ठित प्रत्येक। फिर से दोबारा, जो प्रत्येक वनस्पति है और एक है साधारण वनस्पति, दो अलग अलग भेद है। ये साधारण वनस्पति, अभी हम बादर की बात कर रहे हैं, तो बादर है तो उसका अर्थ है वो किसी के आधार से रहेंगे। बादर निगोद है वो किसी के आधार से रहेंगे। किस किस के आधार से रहेंगे, या तो प्रत्येक वनस्पति के आधार से रहेंगे, हम आपके शरीर के आधार से रहेंगे, या द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय संगी असंगी पंचेंद्रिय जो तीरें थे उनके शरीर के आधार से रहे। निगोद का, बादर निगोदों का रहने का यही ठिकाना है। ना वो जल में रहते हैं, ना पृथ्वी में रहते हैं, ना अग्नि में रहते हैं, और ना वायु में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, या तो वनस्पति के आधार से प्रतिष्ठित जिसको कहते हैं, हाँ। या तो वनस्पति के आधार से रहेंगे, या हाँ द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय के शरीरों के जिसको हम औदारिक शरीर कहते हैं उनके आधार से। औदारिक को क्यों लिया, देव और नारकियों के जो वैक्रिक शरीर है उनके आधार से निगोद जीव नहीं रहते। जो मुनियों का आहारक शरीर जो मस्तक में से निकलता है वहां भी निगोद शरीर नहीं रहते, यानी निगोद जीव नहीं रहते। बारहवें गुणस्थान वर्ती जो जीव है मुनिराज है, वो जब ध्यान में लीन है तो उनके शरीर में से निगोद अपनी अपनी आयु पूरी करके निकलते हैं, नए उत्पन्न नहीं होते। तो जब तेरहवें का पहला समय आता है तो निगोद रहित शरीर हो जाता है। उनके शरीर में कोई वर्म्स भी नहीं रहेंगे, त्रस जीव भी नहीं रहेंगे। क्यों, अरे त्रस जीव रहेंगे तो उनके शरीर के आधार से निगोद रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं समझे। हमारे इस शरीर के आधार से तो निगोद रहते हैं, पेट में जो कोई वर्म्स आदि होते हैं उनके भी शरीर क्या है, औदारिक शरीर है, उनके शरीरों के आधार से भी निगोद रहते हैं। तो जो अरिहंत भगवान है उनके शरीर के आधार से निगोद नहीं रहते, वो पहले ही बारहवें गुणस्थान में ही चले जाते, निकल जाते अपनी अपनी आयु पूरी करके, नए उत्पन्न नहीं होते। तो उनको वहां परम औदारिक शरीर कहते हैं। आपने सुना होगा, हम गाते भी है, स्तुति भी करते भगवान की कि आप परम औदारिक शरीर के धारण हो, स्फटिक जैसा निर्मल शरीर कहाँ है वहां पर। तो ये जो निगोद हमने देखे, बादर निगोद की बात चल रही है। इसीलिए देखो द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के शरीरों को, ये देवनारकी छोड़कर, उसको मांस कहते हैं। मांस भक्षण नहीं करना क्यों कहते हैं,
कितने जीवों की
कितने होती है, अकेले उस एक जीव की नहीं होती है,
अनंत
जीव, अनंत जीव। क्यों अन्यमति क्या पूछते हैं। अभी किसी के ईमेल आई थी वहां वॉशिंगटन में, और वहां पूछा था कि एक पंचेंद्रिय जीव आप मारते हो, आप मारते हैं ना, कोई मारते है एक गाय और उसको अनेक जीवों को उसका अन्न मिलता, एक ही जीव की हत्या हुई। और आप वनस्पति खाते हो तो अनेक वनस्पति को मारकर आप एक ही जीव का पेट भरते हो, या ऐसा क्यों उल्टा सुल्टा? तो उसने ये नहीं जाना है, वहां पंचेंद्रिय जीव की हत्या तो हुई ही है, परंतु वो जो शरीर है उसका, वो जीव मर गया। अभी जीव वहां था तो भी अनंतानंत निगोद हर समय पैदा हो रहे थे, जीव निकल गया है, फिर भी अब वहां जो वो मांस पड़ा है, वहां पर वो जो देह पड़ा है, वो हड्डी सभी जो कोई उसके अवयव है, उसमें हर समय अनंत अनंत निगोद उत्पन्न होते हैं, मरते रहते। उसका जो लेदर भी बनाते हैं, लेदर की कोई भी वस्तु हो, उसमें भी अनंत निगोद जीव हर समय उत्पन्न होते और मरते रहते। अब उत्पन्न होते हैं मरते रहते का अर्थ क्या देखेंगे? देखो ये लेदर के शूज है, लेदर के बेल्ट है, पर्सेस आते, जो कुछ है
वो तो सीख गया है और बाजार में आ गए, फिर भी इसमें होता है,
फिर भी होते रहते हैं। और बाजार में आया है तो हमने उसकी अनुमोदना दी कि नहीं, कि बिना अनुमोदना के हम वापर रहे उसको? सिल्क में क्या होता है, एक सिल्क की साड़ी छोड़ो, एक कितना 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर कितने, देखो आपने शायद देखा होगा टीवी पर वगैरह, लाखों वो कीड़ों की पैदाश करते हैं और उनको उबलते हुए पानी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो आखा धागा मिलना चाहिए, नहीं तो धागे टूट के मिलते। यदि वो कीड़े जो है पूर्ण उनकी ग्रोथ हो जाती है और कोष छोड़कर निकल जाते हैं तो भी मिल सकता था सिर्फ, परंतु तभी वो टुकड़े टुकड़े मिलते। तो इनको अपनी वो शान के लिए इतने लाखों कीड़ों को बॉइलिंग वाटर में उबालते हैं ताकि उनको वो पूरा धागा मिले और उसमें से वो सारे सिल्क के वस्त्र बनते हैं। तो हमें विचार करना है कि हम स्वयं जीव है, तो हमें अगर इतने कोमल परिणाम नहीं हो कि जहां अन्य जीवों के इतने रहने के ठिकाने हैं उसको अगर हम टाल नहीं सकते हैं तो हमें इतने कोमल परिणाम भी नहीं, और इतने कोमल परिणाम नहीं होंगे तो धर्म की बातें कान पर पड़ने पर भी उसका कुछ नहीं असर होने वाला।
मेरा एक क्वेश्चन है, हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो कोई भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच, किसी के भी शरीर की चीज यूज करते हैं, वुड ले लिया तो वनस्पति,
वो वनस्पति,
तो फिर उसमें भी निगोद जीव, कोई भी चीज लो,
इट
इज सम, आपने क्लेवर शब्द यूज किया था पहले, इट्स समबडीज क्लेवर, तो फिर
देखो,
उसमें
देखो।
भी कंटिन्यूअसली यूज निगोद जीव पादर।
सुनो सुनो, आपने जो कहा ना क्लेवर शब्द यूज किया था, क्योंकि हमें उसका फीलिंग हो इसलिए,
बराबर है।
अभी ये जो पत्थर है, जो पत्थर कलर, अभी उसमें निगोद नहीं उत्पन्न हो रहे, अब ये लकड़ी है, अब इसमें निगोद नहीं है,
तो जो प्रोसेस्ड लेदर है उसमें,
उसमें भी
प्रोसेस्ड है, ये
जो प्रोसेस्ड हो या कुछ भी हो, क्योंकि लेदर में तो निरंतर उत्पत्ति है ही है।
डिफरेंस क्या है ये और वो?
ये तो सूख गया है, ये सूखने के बाद, देखो
दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के
मांस जो है वो सूखने पर भी उसमें से निगोद की उत्पत्ति नहीं रुकती है, और वनस्पति जो आदि है जहाँ पहले में निगोद रहते थे वो सूखने पर अभी उसमें निगोद नहीं रहते। एक बात, वनस्पति जहाँ निगोद रहते हैं वो भी जब पत्ते कौले होते हैं बिल्कुल तो वहाँ निगोद रहते हैं, क्योंकि तो वहाँ उनकी वो सिरा वगैरह नहीं दिखती है, तोड़ने पर समभंग होता है, तो समझना कि यहाँ निगोद रह रहे। जब वो पत्ते बड़े हो जाते हैं उसमें वो वेंस वगैरह सिराएं दिखाई देती है, यदि हम वो आपने कौन से वो पापड़ी वगैरह निकाली ना तो तंतु लगे रहता है, तो तंतु लगे रहना उसका अर्थ है अभी उसमें निगोद नहीं है। बिल्कुल छोटी अवस्था में तोड़ेंगे तो उसमें ना तंतु होता है ना वो आड़ा टेढ़ा, वो समभंग होता है, इक्वल टूटता है, तो समझना ये खाने योग्य नहीं है, यहाँ पर निगोद रह रहे हैं। इतनी बात नहीं, और भी मैं बताऊंगी आपको, और वो शास्त्र के आधार से बताऊंगी कि निगोद कहाँ कहाँ। सभी जो ये प्रत्येक वनस्पति है एट सम स्टेज दे आर विथ निगोद,
जो भी कुमरू हमें कहिए कुमरू शाक है
वो तो है ही है
निगोद,
दैट इज वन ऑफ द, परंतु ऐसे भी है अभी गहू, तो गहू उसमें तो कोई जीव नहीं है ना, प्रत्येक है ना साधारण, पर अभी वो पानी में डुबोया हमने, उसमें बोया भी तो उसमें उत्पन्न होते हैं, तो उसमें भी शुरू में निगोद हो गए, बाद में वो चले जाएंगे, तो हर एक के ऐसे बहुत सारी अवस्थाएं बताई है, उसमें निगो तो कब पाए जाते कब नहीं पाए जाते। तो ये जो चरणानुयोग के नियम है हमारे, वो करणानुयोग पे आधारित है। देखो आपको शायद मालूम नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, और चौंक नहीं जाना सुनने पर, ये थुअर क्या होता है? थुअर थुअर
थोर
थोर हेलो हेलो वेरा गवार फाटा के गुआर फाटा क्या कहते
हैं?
वो हिंदी में उसको गवार फाटा कहते हैं,
गुजराती में कुमार फाटा।
ये निगोध है, बिल्कुल निगोध है। और मैं ये जाहिर में पहले मैं जयपुर देवलाली में इसको आउट किया था, उस पर मैंने बहुत सालों तक ग्रंथों का अध्ययन किया, और ये लाठी संहिता ग्रंथ है, उसमें तो इसी भाषा में लिखा है, और अपने ग्रंथों में तो उसको उसका डिस्क्रिप्शन आता है, जाली छाल होती है, उसके कांटे होते हैं, वो उसको थोर कहते हैं। ये बातें तो प्राकृत ग्रंथों में भी आई हुई है।
और एक प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए,
वहाँ निगोध है, क्योंकि पहले हम जब जानते नहीं थे तब यदि हमारे से भूल होती हो तो अभी जब समझ में कैक्टस
एक जात से आगे बढ़ना चाहिए।
अभी उसमें क्या है, वनस्पति अपने स्टोरेज ऑफ एनर्जी है उनकी,
क्रीम बनाने
तो सारी
बना। अभी सभी जो क्रीम्स है, स्किन की अनेक शैम्पू है, अनेक क्रीम्स है, उसमें ये यूज होता है। अभी उसके फैशन ही निकल पड़े ना एलोवेरा की। ये तो कहाँ होते है बताना हमारा काम है, आप क्या करना है वो आप देखो, ख्याल है ना। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं,
चार एक इंद्रिय और चार अन्य प्रकार से
वो कहाँ कहाँ नहीं होते हमने देखे थे ना। देखो जरा देखो,
दस
मिनट ये निगोद किसको कहना और क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। देखो 123 पृष्ठ पर है निगोद की, तो ऐसी बात है। देखो एक निगोद शरीर है, उसमें कितने जीव है? तो अनंत जीव है, तो अनंत जीव ऑलरेडी उसमें एग्जिस्टिंग है, हर समय नए अनंत की बैच आती है, और जिनको पुराने अनंतों की जिसकी आयु पूरी होती है वो निकल जाते हैं। जैसे हमने कर्म में देखा था, हर समय नए कर्म आते पुराने निकल जाते, वैसे निगोद शरीर तो बना रहता है, उसमें हर समय अनंत का लौट आता है और अनंत का लौट चला जाता है अपनी आयु पूरी करके। जैसे स्कूल में हम देखते हैं, इंडिया में पहली से दसवीं साल तक का, ये दसवीं क्लास तक का स्कूल है, हम मान लेते हैं कि हर साल 100-100 की बैच एडमिशन होती है और दसवीं पास करके 100-100 निकल जाते हैं, तो स्कूल हमेशा ही बना रहता है कि नहीं रहता? तो ऐसे ही हर समय में अनंत जी उत्पन्न होते हैं, दूसरे समय में दूसरे अनंत उत्पन्न होते हैं, तीसरे समय में तीसरे अनंत उत्पन्न होते हैं, अपनी अपनी लाइफ पूरी करके निकल जाते हैं, फिर भी वो निगल शरीर हमेशा अनंत जीवन से भरा पड़ा रहता है। ये लेदर में भी ऐसा ही होता है, निगोद की पता ही नहीं, क्योंकि हम जब जीवों की अनंतता देखते हैं तो सारी अनंत राशि पूरी निगोद में पड़ी हुई। निगोद के अलावा कोई भी ले लो, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, द्विइंद्रिय, तीनइंद्रिय, चतुरइंद्रिय, पंचइंद्रिय, किसी भी जीवों की संख्या निकालो वो असंख्यात है, निगोद ही अनंत होते हैं। यहाँ कहाँ कहाँ नहीं होते हैं, ये प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित है ना, तो प्रतिष्ठित प्रत्येक, यानी जिस प्रत्येक शरीर के, देखो हम आप भी प्रतिष्ठित हैं, नॉट ओनली वनस्पति आर प्रतिष्ठित, हाँ जैसे सूक्ष्म और बादर एक इंद्रिय में ही है, ये जैसे देखा था वैसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद कहाँ है? वनस्पति में तो है ही है, और हम सारे कैसे है, जहाँ जहाँ निगोद रहते हैं उन सबको प्रतिष्ठित कहना, हम सब प्रत्येक शरीर ही है ही है, परंतु द्विइंद्रिय से लेकर जो औदारिक शरीर वाले हैं पंचेंद्रिय तक, वे सभी प्रतिष्ठित है। अब कौन से प्रत्येक शरीर ही प्रतिष्ठित नहीं है, यानी कौन से शरीरों के आधार से निगोद नहीं है, इसको भी जानेंगे ना। तो देखो पृथ्वी आदि चार प्रकार के जो जीव है उनके जो शरीर है कौन कौन से, पृथ्वी कायिक है, अग्नि कायिक है, यानी पृथ्वी के आधार से, जल के आधार से, अग्नि के आधार से और वायु के आधार से, यानी उनके शरीर, पृथ्वी का एक जीव कहते ना, उनके शरीर, पृथ्वी का एक शरीर यानी क्या पृथ्वी, उनके आधार से बादर निगोद नहीं रहते, ये चार हुए। फिर देवों का शरीर वैक्रेत, नारकी का शरीर, ये छह हो गए। जो मुनियों का जो आहारक शरीर मस्तक से पुतला निकलता है, अंतर्मूर्त में वापस आता है, आपने सुना होगा कि नहीं सुना, आहारक रिद्धिधारी मुनि के मस्तक से जिनका आहारक रिद्धि है, वो जो आहारक शरीर निकलता है उसमें भी निगोद नहीं रहता। ये सभी कैसे अप्रतिष्ठित है, यानी उसमें निगोद नहीं है। केवली की बात मैंने बताई थी आपको, जो केवली है बारहवें गुणस्थान में, उनके शरीर के आधार से रहने वाले बादर निगोद चले जाते हैं और फिर वो तेरहवें गुणस्थान में केवली का शरीर भी निगोद रहित हो जाता है। ये सारे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाएंगे। वनस्पति में तो हमने देखी है, वनस्पति में भी प्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित होती है। तो ये निगोदों की क्या क्या विशेषता है उसको जरा देख लेते, अभी पांच मिनट है ना आपके पुस्तक में, 121 होगा शायद, या मेरा 123 है, हिंदी में 123
है, 123 में थर्ड पैराग्राफ
देखो मैं पढ़ती हूँ, आप देखना अपने अपने। देहधारी जीवों में प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर इस तरह दो भेद है, 121 है ना,
नीचे से दूसरा,
हाँ नीचे से दूसरा, क्या काफी पढ़ती हूँ। देहधारी जीव में प्रत्येक शरीर यानी एक शरीर एक जीव और साधारण शरीर, ऐसे दो भेद है। एक शरीर में एक जीव रहता है और उस शरीर का उपभोग लेता है, उसे प्रत्येक जीव कहेंगे या प्रत्येक शरीरी जीव कहेंगे। जहाँ एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं उन्हें साधारण शरीर या साधारण शरीर जीव कहते हैं। साधारण क्यों कहा, उनमें शरीर है वो कॉमन है, साधारण। एक ही शरीर अनंत जीवों में साधारण यानी समान है अर्थात कॉमन है। इस शरीर को निगोद शरीर कहते हैं और उस शरीर में रहने वाले जीव को निगोद जीव या निगोदिया जीव कहते हैं। देखो ये निगोद शरीर है ना, कितने ही ऐसे निगोद शरीर है हम आपको नहीं मालूम, परंतु वो असंख्यात वर्षों तक रहते निगोद शरीर बने रहते हैं और उसमें से जीवों की पैदा चलती रहती, ऐसे भी निगोद शरीर है। आलू प्याज भी देखते हम अन्य सब्जी की अपेक्षा उसके वो तो कितने काल तक रहते हैं कि नहीं, तो उसमें भी होते रहते हैं। इन जीवों का शरीर ही समान है ऐसी बात नहीं है, अपितु इनका जन्म एक समय में, क्योंकि हमने देखा ना जो एक साथ एक लॉट में जन्मते हैं उनका वही लॉट मरता है एक साथ में, मरण एक समय में, आयु समान और श्वासोच्छ्वास समान होता है, यानी एक ही बार श्वास लेते हैं सब मिलकर, एक ही शरीर होते हैं, उनकी पर्याप्ति भी एक साथ चलती रहती है। पर्याप्ति उनकी बात अभी आएगी, आज दोपहर को थोड़ी की थी हमने, तो सब कुछ है। देखो जहाँ पर्याप्त जीव जन्मते हैं पर्याप्त निगोद, निगोद में भी पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं, निगोद में भी कोई अंतर्मूर्त में मरते तो कोई श्वास के 18वें भाग में मरते, तो जो पर्याप्त जहां जन्मते हैं वहां सारे ही पर्याप्त जन्मते हैं, क्योंकि वहां उस शरीर में श्वासोश्वास की क्रिया नहीं होती, और जहां अपर्याप्त जन्मते हैं सारे अपर्याप्त ही जन्मते हैं, ऐसे शरीर ही अलग अलग होते हैं उनके। विवक्षित एक समय में एक साथ जन्मने वाले जीव, विवक्षित विवक्षित है ना पर्टिकुलर, एक समय में एक साथ मरते हैं परंतु हर समय अन्य अन्य अनंत जीव निरंतर, निरंतर का अर्थ क्या है, अंतर छूटे बिना उत्पन्न होते ही रहते हैं, मरण भी होता ही रहता है। इतना होते हुए भी निगोद शरीर टिका रहता है, कितने असमय ने तो असंख्यात वर्ष लिखे बताया था, यहाँ क्या लिखा है, असंख्यात सागर वर्षों तक टिकने वाले निगोद शरीर भी है।
कौन सा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते ना, मैंने तो बताया हमें जो मालूम है कुछ वनस्पतियां हैं और कुछ है, परंतु भगवान के ज्ञान में तो ऐसे भी आए ना जहाँ हमेशा ही निगोद ही निगोद है। एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं इसलिए यह शरीर बड़ा होगा ऐसा मत सोचना, इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। सुनने की तैयारी है? ये सारी बातें केवल ज्ञान गम्य है, त्रिवार सत्य है। इन बातों का अविश्वास सर्वज्ञ भगवान का अविश्वास है। अरहंत सिद्ध सर्वज्ञ है, जिनका इनके कथन पर विश्वास नहीं है उनका नमो अरियंतानंद नमो सिद्धानंद कहना ढोंग है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं देखो, एक सुई के नोक पर जितना हम जो कोई अभी हमने जो देखा था प्रतिष्ठित प्रत्येक उसके आधार से बादर जीव रहते हैं ना निगुर, तो सुई के नोक पर एक छोटा टुकड़ा उसके नोक कितना टुकड़ा लिया उसको कहेंगे उसका टुकड़ा स्कंद। तो एक एक स्कंद में असंख्यात तो अंडर होते हैं, उसके भेद एक एक अंडर में असंख्यात आवास होते हैं, एक एक आवास में असंख्यात कुलवी होती है और एक एक कुलवी में असंख्यात निगोद के शरीर होते हैं और एक एक निगोद के शरीर में अनंत जीव होते हैं। कितने अनंत? तीन काल की जो सिद्ध राशि उससे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में होते। हमें पता ही नहीं ना अनंत किसको कहना और कितना बड़ा प्रमाण है वो, क्योंकि हम देखते हैं जीव अनंत है तो ये अक्षय अनंत राशि है और लोकाकाश तो इतना सा है असंख्यात प्रदेश और उसमें जीव इतने अनंत अनंत है, वो रहते कहाँ है? तो ये सारा निगोद में तो अनंत राशि पड़ी है, बाकी सब राशि असंख्यात है। देखो इतना जल हम देखते है, आपके नायगारा में हम वहां लिखा ना एक सेकंड में इतना गैलन पास होता है पानी और एक बूंद में असंख्यात जीव, फिर भी सब मिलकर भी असंख्यात ही होगी। पूरे लोकाकाश में जितना जल है वो सब मिलकर असंख्यात ही जीव है, तो अनंत क्या हो सकते है? कल्पना करो, असंख्यात की संख्या भी इतनी बड़ी है हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, तो अनंत क्या होगा? और जहां इतने इतने से छोटी जगह में अनंत जीव रहते हैं और यदि हम बिना झिझक उनकी हत्या करते रहते हैं तो वहां ये अनंत जीवों की हत्या का पाप है। जैसे हम मांस मधु मद और ये पांच उदंबर पद क्यों, वहां भी वो त्रस्त जीव है, वहां भी मांस भक्षण का दोष लगता है। ये जो नियम बनाए है नमस्कार में होता होगा, हमारे तो सब स्वच्छ होता है आजकल में, समूर्छन जीवों की अभी बात नहीं निकली निकलेगी। हमें क्या लगता है देखो, समूर्छन जीव हमने सूक्ष्म जीव तो सर्वत्र देखे ही देखे थे, समूर्छन उसको कहते विशिष्ट वातावरण में विशिष्ट जाति के पैदा, कोई ऐसे पैदा होते कि गर्मी में पैदा होते, कोई ऐसे होते कि ठंडी में ही पैदा होते। तो हमने तो क्या समझा है फ्रीज में है तो सब कुछ प्रूफ हो गया, समूर्छन प्रूफ नहीं होता वो। हमें ऐसा लगता है ना हमने फ्रीज में स्टोर कर दिया, लिख दिया ये दाल कब बनाई थी 15 दिन पहले, ये नहीं चलेगी, उसमें दोष है इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बनाओ थोड़ा बनाओ कुछ भी, अभी क्या करना है वो जिसको हा?
दोष है ऐसा स्वीकार करके खाना क्या नहीं खाना?
जो दोष को स्वीकार करेगा उसका खाना छूट जाएगा, उसका जरूरत नहीं है मैं ये छोड़ दो कहने की। देखो इसका अर्थ क्या हमने सुना ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, यदि समझ लेते हैं और फिर भी वही बात करते हैं तो हमने सुना नहीं सुना बराबर है
ना। ऐसी बात सुन के फिर सब्जी लेना जाना भी तकलीफ हो जाती है, घर में रसोई नहीं पकते इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू टू फेस इट आउट।
उसमें अनंत काय तो टाल सकते हैं,
अभी
अनंत काय को टालना है और अन्य वनस्पतियों को टाल नहीं सकते, ये हमारी कमजोरी है। फिर भी उसमें अपने चरणानुयोग के ग्रंथों में प्रासव करने की विधि है, जैसे हम फल भी सुधारते थे देख शोध कर करना है हमको, फिर उसके छोटे टुकड़े करके मसाला आदि कुछ करके, ये इवन जो हरित का है उसको भी खाने के तरीके जैसे पीस कर चटनी बना करके उसमें दूसरे जीवों की फिर से दोबारा उत्पत्ति न हो, ये सारी विधि अपने शास्त्रों में बताइए। जैसे पानी जो है जो व्रतियों के लिए ये सारी बातें है, हम पहले में पहले अपना सारा जो ये तो जितना ये जो पांच उदंबर फल और ये तीन मकार इसको तो त्याग करना ही है, अनंत काय को हम अवॉइड करें और बाकी इतना करने के बाद हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी तत्वों की है, फिर ऊपर की बातें, फिर वो जल के लिए इसके लिए उसके लिए वो साधर ये सादी फल भाजी भी खाने की नहीं खाने उसकी बात अभी यहां मत कर। बेसिक इतना है हमारे लिए कार्यकारी कि अनंत काय की हिंसा हमें टालनी ही है। और अब क्या करना है, अब तत्वों के बारे में हमें बारंबार अधिक से अधिक चिंता कि ऐसे हमारी भूमिका तैयार होगी, हम ऊपर के गुणस्थानों में जाएंगे तो ये खाने के भाव ये भी छूट जाएंगे, सहज होगी। परंतु अगर अभी हमको सम्यक दर्शन नहीं है और हमने पांचवे या ऊपर के गुणस्थानों की क्रिया अभी करना शुरू की तो क्या होता है, ये जंप किया ना हमने, ये क्रमभंग हो गया, क्योंकि फिर हम उसमें उस व्रतों में या उस आचरण में इतने रचे पचे रहते हैं कि हमारा ये सारा विचार छूट जाता है तत्वों का, ये सारे जो हम देख रहे हैं ना द्रव्य गुण
परिणाम, तो मिथ्यात्व टालना, क्रिया करने की
मिथ्यात्व टालना ये पहले में पहले कर्तव्य है।
इसकी भी जो क्रिया है तो मिथ्यात्व की क्रिया रहेगी ना।
कौन सी क्रिया?
कोई भी क्रिया, कुछ भी करें हम,
क्रिया मिथ्यात्व की नहीं होती, मिथ्यात्व श्रद्धा में होता है, क्रिया में मिथ्यात्व होता ही नहीं।
आपने क्या बताया, अगले गुण स्थानक की क्रिया करे तो हम या जंप,
यही तो है ना, मिथ्या दृष्टि मानता है कि क्रिया करने से मुझे धर्म होगा। हमने दोपहर में देखा था तीन बातें, समय हो गया, एक ज्ञान करता है, एक शुभाशुभ भाव करता है और एक शरीर की क्रिया करता है। जब सम्यक दृष्टि होता है तो मानता है, उसके पता है कि शरीर की क्रिया मेरे से भिन्न है, शुभ भाव भी उठने वाले हो रहे हैं और इन दोनों से वो अपने को भिन्न पहचानता है। मिथ्या दृष्टि जीव ये शरीर की क्रिया में उसका इतना एकत्व है और शुभ भाव में भी, तो फिर वो जितनी सारी क्रिया करता है उसमें करने जैसे मेरा कर्तव्य है, ये मेरी क्रिया है, उसमें जड़ की क्रिया और मेरी क्रिया इसमें भेद नहीं मालूम है, इसलिए उसका मिथ्यात्व पुष्ट होता है। तो आगे की क्रिया करता रहता है, व्रत आदि पालन करता है, नहीं करना ये बात नहीं है, परंतु तत्व विचार के बिना सारा करता है और उसका मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, तो उसका मिथ्यात्व पुष्ट होता है। अभी इसके लिए बहुत एग्जाम्पल है, अपना विषय समय भी पूरा हो गया है, चरणानुयोग के आचरण तो अवश्य है परंतु मिथ्यात्व के बिना करेंगे। देखो यहाँ डॉक्टर सब बैठे हैं, मिथ्यात्व बिना करेंगे या सहित करेंगे उसमें फेर है कि नहीं फेर? मेरे कोई वैसे यहाँ गुंड हो गई, जख्म हो गई और उसमें कचरा बिचरा भर गया,
गिर गए।
अच्छा, तो फिर हमने क्या किया उसको, बहुत अच्छा उसमें
मलम लगाया,
क्लीन नहीं किया, पट्टी लगा दी बहुत अच्छी दिखने वाली, क्या होगा,
इन्फेक्शन
होगा ज्यादा उसमें, तो पनपेंगे ना जंतुओं को, तो अच्छा मिला। वैसे हम क्या करते हैं, मिथ्यात्व अंदर साबुत है और ऊपर चरणानुयोग की पट्टी बांधते हैं, व्रत आचरण करते हैं, अंदर मिथ्यात्व पनपता है, क्यों, उस क्रिया से हमने धर्म मान लिया। बेन क्रिया नहीं करने की वो बात नहीं, वो क्यों करना था, जब मिथ्यात्व निकल गया है तो बाह्य जो प्रदूषण है, जो बाह्य अन्य बातें है उससे बचने के लिए, अन्य जो हमारे हाथ से पाप होते उसके बचने के लिए हम वो, तो मिथ्यात्व जाने के बाद लगाएंगे तो बहुत कार्यकारी है। ये अंदर रख दिया और ऊपर पट्टी बांध दी आचरण की, तो क्या होगा, तो कोई कहेंगे हम आचरण छोड़ देंगे, नहीं, वो तत्व विचार करना, मिथ्यात्व को टालना और साथ साथ आचरण करना ज्यादा कार्य करेगा। अभी इस पर बोलने जैसा बहुत है, मैं यही रुकती हूँ, मैंने 5 मिनट खा लिया आपके यहाँ। अच्छा, बोलो 2400 भगवान की जय। परंतु मेरे इसमें तो